जी छठे पारे को थोड़ी सी बातों की रोशनी में समझेंगे। पहली बात है कि छठे पारे के अंदर शरीयत वर्सेस जाहिलियत, यानी इसका मेन थीम क्या है कि अल्लाह ने उम्मते मुस्लिमा को एक बड़ी खूबसूरत शरीयत दी थी, शरीयत जिसको बोलते हैं, उसके बरक्स जब जाहिलियत के तौर तरीके आम होते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है। फिर आप देखेंगे इस पारे में इसका आगाज क्या है, जुबान के जिहाद से। हम हमेशा उम्मते मुस्लिमा के नाम के साथ अगर जिहाद का लफ्ज रखते हैं तो वो तलवार का जिहाद है, लेकिन इसका आगाज जुबान से शुरू होता है। हम इंशाल्लाह देखेंगे आयतों के साथ। अल्लाह ताला ने हमें इसमें एक मैसेज दिया कि जुबान की कैंची से नेकियों की फसल को ना काटो। एक मुसलमान पे लाजिम है कि दूसरे मुसलमान की इज्जत करें। किसी भी तरह आप किसी को डिग्रेड नहीं कर सकते, चाहे वो दीन में आपसे मुख्तलिफ सोच रखने वाला कोई दीनी आलिम है या कोई दुनिया में गंदगी में लतपत पड़ा हुआ कोई शख्स है जो जहालत में कूदा हुआ है, उसको भी आप डिग्रेड नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट द ह्यूमैनिटी। इसमें हिफाजत जुबान या हिफाजत इज्जत शरीयत के मकासद में से इस बारे में हमें इसकी फायदे मिलेंगे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसमें हमें यह सबक मिलेगा कि मोमिन हर वक्त इबादत की हालत में होता है। इसकी खामोशी भी इबादत होती है और इसके कौल भी इबादत होते हैं। फिर इसी तरह से हम इस बारे में देखेंगे कि जब लोग अल्लाह के लाए हुए दीन को पसंद नहीं करते तो उसकी जगह पे फिर वो क्या करते हैं। आइए आयतों के साथ साथ बाकी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। छठे पारे का आगाज है आयत नंबर 148। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सुई मिनल कौली इल्ला मन ज़ुलिम वकानल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई पर जुबान खोले, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने और जानने वाला है। मजलूम होने की सूरत में अगरचे तुमको बदगोई का हक है, लेकिन अगर तुम जाहिर व बातिन में भलाई ही किए जाओ या कम अज कम बुराई से दरगुजर कर लो तो अल्लाह की सिफत यही है कि वो बड़ा मुआफ करने वाला है, हालांकि सजा देने पर पूरी कुदरत रखता है। पारे का आगाज एक ऐसे लफ्ज से शुरू हुआ कि जिसको सुनकर एक ईमान वाला लरस जाता है, और वो लफ्ज क्या है, ला युहिब्बुल्लाह, अल्लाह मुझसे प्यार नहीं करेगा। देखिए जिससे प्यार होता है उसका प्यार बंदा लेना चाहता है, जिसको अल्लाह से मोहब्बत है वो तो इस पहले लफ्ज में खो के रो पड़ेगा, अल्लाह ताला आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे, अल्लाह की कौन से अमल है जो आपकी मोहब्बत को छीनते हैं। और यही आयत है जिस पे हमारी एक सदका जारिया सीडी है जिसका नाम क्या है, अल्लाह के पसंदीदा लोग, कुछ इस तरह के नाम है, बिलवेड्स ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला, वेबसाइट पे मौजूद है। लेकिन इसकी रोशनी में हमने देखा क्या था, वो सारे काम इकट्ठे कर दिए गए थे, किन कामों के करने पे अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी दी है कि मैं उनसे मोहब्बत करता और किन चीजों से अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता। दूसरी बात देखिए कि इस आयत में अल्लाह ताला ने ये बताया कि जब कोई तुम्हें सताए, तुम पे जुल्म करे तो तुम क्या करो। इसके बहुत डिफरेंट एंगल हर साल के दौरे कुरान में हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिविजुअल लेवल पे जब कोई आपकी गीबत करे तो क्या करो, खानदानी दौर में सास बहू की बुराई करे तो क्या करे, बहू सास की, वो सब छोड़ दीजिए। आज हम उम्मते वसत बन के शायद को समझेंगे। आज हम क्या सुनते हैं कि लोग मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, किसी मीडिया में, किसी फोरम में, किसी बड़ी शख्सियत की जुबान से, कहीं भी कुछ, कोई आपके लिए कोई बात कहता है, नेगेटिव जुमला आपके लिए बोलता है, उसको सुनकर हमारा क्या रवैया हो सकता है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब थे तो आपके सगे चचा की बीवी जिनका नाम उम्मे जमील था, वो आपके नाम को बिगाड़ कर कहती थी कि मुजम्म फीना, हमारे दरमियान आजकल एक मुजम्म आया हुआ है, नऊज़ुबिल्लाह, और मुजम्म सुपरलेटिव डिग्री है, वो शख्स जिसकी बहुत मजम्मत की जाए, कह लीजिए कि अल्लाह के नबी की बेइज्जती करती थी। लोगों ने आके अल्लाह के नबी को बताया, क्या आपको बताया आपकी चची आपके लिए क्या कह रही है, तो आपने आगे से क्या कहा, कहा ये कौन है, मेरी माँ ने तो मेरा नाम मोहम्मद रखा है। ये है आज उम्मते मुस्लिमा को करने का काम, लोग आपके नाम बिगाड़े, लोग आपको कुछ भी कहें, आपके ये तो हम है ही नहीं, हुआ सम्मा कुमुल मुस्लिमीन, मैं तो मुसलमान हूं, आपका कोई नाम बिगाड़ता है कुछ भी, टेररिस्ट कहता है, फनेटिक कहता है, फंडो कहता है, कुछ भी कहता है, आप चेक करें। देखिए जब कोई आपका नाम बदले, आप पे जुल्म करे, ज्यादती करे, उसके जवाब में अपना मुहासबा करें, कहने वाला सच कह रहा है तो इसलाह कर ले, फिर तो उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको मौका दिया। और अगर उसने गलत कहा और वो गलत फहमी की बुनियाद पर कहा या आपको ना जानने की बुनियाद पर कहा, तो दुआ करें, और उसको उससे अच्छा बनकर दिखाएं। जब हम एक बात पे 10 नेगेटिव जुमले बताते हैं उसका नुकसान क्या होता है। एक छोटी सी सीरीज आज की बात में, बहुत छोटी से मतरूक सुन्नतों के नाम पर हमने एक सीरीज की थी कि आज के दौर में अल्लाह के नबी की कौन सी सुन्नत है जिसको मुसलमानों ने तर्क किया हुआ है। आपके जहन में फौरन आएगा मिसवाक, अच्छा दाढ़ी रखना, अच्छा टोपी पहनना, कई लोगों ने ऐसी सुन्नतों काम किया ना। लेकिन उसमें एक टॉपिक हमारा ये था कि आपकी सुन्नत क्या थी कि जब लोग आपको बुरा भला कहते तो आप उसको किल विद काइंडनेस के साथ रखते। वो वाक्य भी आपने सुना होगा, वो पोइम भी अगर वक्त होता तो आपको जरूर सुना देती, जो बुढ़िया की कहानी है कि वही औरत जो अल्लाह के नबी सल्लम की वजह से मक्का छोड़ के जा रही है और आपको एक मजदूर समझ कर आपको सामान अपना उठवाती है, सारा रास्ता आपकी बुराइयां करती जा रही है और आखिर में जब पूछती है कि तेरा नाम क्या है तो कामा में वही मोहम्मद हो जिसकी बातें आप कर रही थी, कहा तू मोहम्मद है तो फिर अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा कौन चिढ़ता है अपनी बुराई सुन के, जिसको एहसास कमतरी होता है। आप अपने बच्चों में ये एटीट्यूड देखिएगा, कोई बच्चे हैं ना उनको जितनी बातें कर दो वो हंसते रहते हैं आगे, वो कोई बात नहीं दिस वन, कोई दूसरा उसको जरा सी बात कर दो टप टप रोते हुए शिकायत लगाएंगे इसने ये कहा। जो बंदा छोटी सी बात पे सेल्फ पिटी का शिकार हो समझे कि वो एहसास कमतरी का शिकार है। आज चूंकि हम उम्मत मुस्लिम एहसास कमतरी का शिकार हो चुके हैं, छोटी सी बात पे ऑफेंड होते हैं, कोई कार्टून बना ले, कोई बात कर ले, कोई कुछ कर ले। आप ये सोचिए हमारा नबी सबसे प्यारा इंसान था, दुनिया सारी उसकी बुली भी कर लेगी ना, अल्लाह ना करे तो उनकी शान अपनी है, वो मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं और आप लोगों की बातों को एक कान से सुन के दूसरी से निकाल के वो काम करें। हम इसके जवाब में जब रिएक्शनरी होते हैं और अपने ही मुल्क की बिल्डिंगों के शीशे तोड़ देते हैं और बसों को आग लगा देते हैं और उन्हीं की एम्बेसी को जलाते हैं और बाद में हमारे मुल्क बदनाम होते हैं तो उसका नुकसान होगा, तो अल्लाह को पसंद नहीं है। बाकी मजलूम को हक है जुल्म का बदला ले ले, लेकिन अगर इंसान सब्र कर ले अल्लाह पे डाल दे तो अल्लाह ताला तो जानता है। और कितना सब्र आता है इस बात पे कि अल्लाह को पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें अपनी इसलाह करने वाला और दूसरों को अपने अच्छे रवैये के साथ अच्छा बनने वाला दिखा दे। इस पे बहुत सारे वाकयात हैं जिसका इस वक्त वक्त नहीं है, लेकिन अब अगली आयत का मौजू बड़ा अहम है, थोड़ा सा समझ लीजिए। बस लोग क्या कहते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ दीन है और रिलीजन ऑलवेज मेक प्रॉब्लम्स। मैंने ये बहुत सारे नॉन मुस्लिम के मुझसे वर्बली भी ये बात सुनी है, कहते हैं नहीं जब मैं उनसे कभी बात करूं अच्छा आपका रिलीजन क्या है या आपके, वो कहते हैं आई डोंट हैव एनी रिलीजन। व्हाई? बिकॉज रिलीजन ऑलवेज लड़ाइयां कराता और दुनिया में जंगे लड़ाइयां इससे हुई। अब ये बात जब हुई ना तो बस लोगों ने इसका हल क्या निकाला कि सारे दीनों को निकाल दो, तुम जो कर रहे हो मैं जो कर रही हूं हम अपने आप को करते जाए, किसी को बुरा ना कहो। इसको आज के दौर में कहते हैं वहदत अदियान, यूनि रिलीजन होना। वो क्या होता है जिसको वो मौलाना हाली ने या अपने दौर में भी आपने वो जुमले सुने होंगे ना कि मस्जिद मंदिर हुकड़ो नूर, कि मस्जिद और मंदिर एक ही चीज, हिकड़ों में एक ही है, ये गलत चीज है। मस्जिद मस्जिद है, मंदिर मंदिर है, वहां अल्लाह को पुकार रहे हैं, वहां अल्लाह के साथ किसी और को लेकर जा रहे हैं। तो बस लोगों को खुश करने के लिए कि ठीक है तुम्हारा रिलीजन भी ठीक है मेरा भी ठीक है, ठीक है भगवान कह दो, हरमन कह दो, यजदा कह दो, खुदा कह दो, सब एक ही है। और इस तरह से जब वो करना चाहते हैं तो मसला सामने रास्ते में एक आता है और वो कौन है? रसूल। रसूल आपको फर्क बताता है कि अल्लाह कौन है, रसूल कौन है। रसूल को निकाला तो नेकियों का मनपसंद वर्जन सामने आ गया, क्योंकि आप पढ़ते हैं अकीम उस्सला, नमाज पढ़ो। अब आप कहते हैं नमाज पढ़नी है, कुरान में लिखा है सलात, सलात का मानी डिक्शनरी में देखेंगे प्रे। कोई कहेगा नमाज में कैसे, मैं प्रे का क्या होता है, मैं बैठ के दुआएं मांगता रहता हूँ। कोई एक बुत के आगे नाचेगा कहेगा मैं नाच के इबादत कर रहा हूं, कोई आग के गिर्द फेरे लगाएगा। रसूल को जब जिंदगी से निकाल देते हैं ना तो सारे मजाहब का फर्क मिट जाता है, और ये फर्क ही तो मदीना के यहूद ना निकाल सके तो इस्लाम पे ना सके। अब इन सारी बातों की रोशनी में नायतों को सुनिएगा। इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिल्लाहि व रसूलिही व युरीदून अन युफर्रिकु बैनल्लाहि व रसूलिही, जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से कुफर करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और इसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं हम किसी को मानेंगे और किसी को ना मानेंगे और कुफर और ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा करते हैं। याद रखिए, जब आप इस्लाम के कुछ पुर्जे निकाल के कुफर के लगा लें तो इस्लाम भी नहीं रहता। मिसाल पीछे भी आपको कई बार दे चुकी हूं, कुफर और ईमान के बीच की राह का नाम निफाक है, जिसका तस्करा पिछले पारे के एंड पे हमने सुन लिया। तो लिहाजा बीज की राह तो फिर कुफर की या ईमान की नहीं होगी बल्कि वो निफाक की होगी। अल्लाह कहते हैं ये सब पक्के काफिर हैं, ऐसे काफिरों के लिए हमने वो सजा मुकर्रर कर रखी है جو انہیں ذلیل و رسوا کرنے والی ہوگی، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سی نیکی کتنی کب کیسے کرنی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کیونکہ یہ ٹاپک بہت اہم اور آج ہماری نسلیں اس پریشانی کا شکار ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کیوں اپنے کرسچن دوست کو اسلام کی دعوت دیں، ہم اس کے کہنے پر کرسچن کیوں نہ ہو جائیں؟ اور کیا آپ کو یقین ہے کہ اسلامی سچا مذہب ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلاں 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 مذہب والے ٹھیک نہیں؟ دیٹ مین کہ دیر از سم کنفیوژن۔ تو آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیے اللہ تو اوپر ہے نا، اللہ نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو دنیا میں بھیجا۔ رسول صرف یہی نہیں بتاتا کہ نیکی کرنی ہے، بلکہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ نیکی کیا ہے۔ بس آپ دیکھیے کہ ایک شخص اپنے کپڑے اتار کر کہیں ناچنا شروع کر دے، کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو، کہے گا نیکی کر رہا ہوں۔ پوچھیں گے اس کا معیار کیا ہے، تو اس کا کوئی جواب نہیں۔ دو لفظ یاد کر لیں، ایک ہوتا ہے گڈ ڈیڈس اور ایک ہوتا ہے رائٹیس ڈیڈس۔ بس اس دو کو ادھر لکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ رائٹیس ڈیڈ از ڈفرنٹ فرام گڈ ڈیڈس۔ کوئی بھی عمل گڈ ڈیڈ ہو سکتا ہے، مثلا عورتیں مردوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہی ہیں، سوشل ورک ہو رہا ہے، آپ زلزلہ زدگان کی مدد کر رہے ہیں، اٹس گڈ ڈیڈ۔ سچ بولنا گڈ ڈیڈ ہے، آپ کوئی بھی اچھا کام کریں۔ لیکن کوئی گڈ ڈیڈ رائٹیس ڈیڈ کب بنتا ہے؟ جب اس پہ بھی مہر ہوتی ہے۔ آپ آج دین کے نام پر کچھ کریں، لوگ کہتے ہیں ہم یہ کنسرٹ رکھ رہے ہیں، بھائی کیوں؟ کیونکہ اس کی ساری منی جو ہے ہم زلزلہ زدگان کو دیں گے۔ یہ آپ کو پتا چلے گا سنت سے، کیا اچھی کاز کے لیے، فار اے گڈ کاز، آج کا نعرہ فار اے گڈ کاز، فار اے گڈ کاز کیا بیڈ کام کر سکتے ہیں؟ یہ نبی بتاتا ہے۔ تو لہٰذا سنت کی اہمیت زندگی میں رکھیں۔ پچھلے ادوار کا جو شوشہ تھا کچھ اور تھا، اس سینچری میں جو پرابلم کریٹ کیے جا رہے ہیں وہ انکار حدیث کا۔ قرآن کو مانو، حدیث کو نہ مانو۔ اچھا یہ بات قرآن میں تو ہم مان لیں گے، حدیث میں تو ہم نہیں مان سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بانٹ سے محفوظ رکھ دے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء۔ اے نبی، اہل کتاب اگر آج آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کیا آپ آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کر دیں، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبہ یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں، اس سے تو انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ آپ دیکھیے یہ وہی ساری باتیں جو سورۃ بقرہ میں پڑھی، اس کا ریکیپ ہے۔ یہاں یہ بات ذرا نوٹ کیجئے گا کہ بنی اسرائیل نے انکار کیا، پہلے کہتے تھے کوئی کتاب لے کر آؤ ہم پڑھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلائے گئے، 40 راتیں وہاں رہے، عبادت کی، اللہ نے تورات دے دی، اللہ کے حکم سے مل گئی، پیچھے سے بچڑے کو پوچھنے لگ گئے۔ موسیٰ جب آئے تو ان کو غصہ آیا، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ جب کہا چلو آؤ کیا کتاب لاؤ پڑھاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی بنی اسرائیل کو کتاب پڑھانی شروع کی تو کہنے لگے اوف اٹس ٹو ہارڈ، وی کینٹ ڈو دے، عمل نہیں ہو سکتا، آج کے دور میں امپاسبل ہے، وی نہیں کر سکتے۔ جو ہی انہوں نے یہ کہا کہ تورات قابل عمل نہیں ہے، اٹس ہارڈ ٹو ڈو دس، اللہ نے طور کو اپنی جگہ سے اٹھا کر ان کے سر پہ کھڑا کر دیا۔ آج جو معجزوں کا انکار کرتے ہیں وہ اس کا انکار کریں گے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ آسمان کیسے کھڑا ہے، درخت کیسے کھڑے ہیں، جو اللہ یہ کر سکتا ہے وہ کیوں نہیں کرتا؟ تو معجزے کا انکار بھی انکار حدیث میں آتا ہے جو پچھلی آیت کے ساتھ ربط ہے۔ تو جو ہی طور ان کے اوپر گیا نا تو خوف زدہ ہو گئے اور فوراً سجدے میں چلے گئے۔ آج بھی یہود کے کچھ گروہ اسی سجدے کو سجدہ رفع عذاب کے نام پہ کرتے ہیں، ایک آنکھ سے اوپر بھی دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہاڑ ہم پر نہ گرے۔ اللہ نے وہ واقعہ آج میرے اور آپ پہ رکھا۔ آج امت وسط کو یہ لگتا ہے کہ دس بک از ٹو ہارڈ، یہ عمل کے لیے بڑی مشکل ہے، بڑی زندگی محال ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ پھر ہمارا طور بھی یہی بن گیا۔ اللہ کی کتاب ہمیشہ آسان ہوتی ہے، ہم اس کو مشکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو، اس پر ان سے پختہ عہد لیا گیا۔ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا اور کئی پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں۔ یہ ہائی لائٹ کرنے کا جملہ، جب لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کو نہ سنیں اور ساتھ یہ جملہ بول دیں کہ ہم سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، ہمارے دل بڑے سیکیورڈ ہیں، ہم پہ آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، پورا قرآن پڑھیں گے عمل کوئی نہیں کریں گے، تو یہی کیفیت مہر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل پہ مہر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل تبا اللہ علیہا، हालांकि दर हकीकत इनकी बातिल परस्ती की सबब से अल्लाह ने इनके दिलों पर ठप्पे लगा दिए। तो अल्लाह की तरफ से ठप्पा क्या है? नेकी मुश्किल लगती है, गुनाह आसान लगता है। अल्लाह का दीन टू मच लगता है, दुनिया टू मच नहीं लगती। अल्लाह दुनिया को सीखने के लिए 16, 17, 18 साल भी कम लगते हैं। अल्लाह के दीन को सीखने के लिए 16, 17, 18 महीने भी टू मच लगते हैं। दुनिया को सीखने के लिए इंसान को कई मील दूर जाना पड़े तो आसान लगता है, अल्लाह के दीन को सुनने के लिए थोड़ी दूर जाना पड़े तो मुश्किल है। अगर इसमें कोई कैफियत हमें महसूस हो तो हमें फौरन चेक करवाना चाहिए अपना हार्ट। जरा सा दिल में एक ब्लॉकेज आ जाता है ना तो हार्ट अटैक का खतरा होता है। इसी तरह जब किसी को इस तरह नेकियां करनी मुश्किल और गुनाह करने आसान लगे उसको फौरन चेकअप कराना चाहिए कि कहीं मेरा दिल मरने वाला तो नहीं हो गया। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को महफूज कर दे। और फरमाए इसी वजह से ये बहुत कम ईमान लाते हैं, फिर अपने कुफर में ये इतने बड़े हुए हैं कि मरियम पर सख्त बुख्तान लगाया और खुद कहा कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह को कत्ल किया। हाईलाइट करेंगे, कोई कौम खुद इकरारे जुर्म करती है कि हाँ हमने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल किया, उस कौम के किरदार का आप अंदाजा लगा सकते हैं। पीछे हमने कत्ले खता और कत्ले अमद का फर्क देखा इसी सूरत में कि बाय मिस्टेक या पर्पसली किसी को कत्ल किया जाए तो ये कितना बड़ा जुर्म है, और जितने बड़े इंसान को मारेंगे ना उतना जुर्म बड़ा होगा। दुनिया में सबसे बड़े इंसान कौन होते हैं? अंबिया। तो जो कौम खुद कह रही है यस हमने कत्ल किया ईसा इब्ने मरियम को, फिर उसके जुर्म के अंदर किसी को शक हो सकता है? ये दावा था उनका। अब सवाल पैदा होता है कि इन्होंने क्यों कत्ल किया, ज्यूस ने हजरत ईसा को क्यों कत्ल किया? थोड़ा सा समझिए, क्योंकि अब यहाँ अगर आप इसके मिजाज को समझ रहे हैं तो दो शरीयतें मिल रही हैं, क्योंकि अब सूरत मायदा शुरू होने वाली है जिसमें उम्मत मुस्लिमा की शरीयत की कहानी है। यहाँ वो जो दुआ मांगी थी ना गैर मकदूब वालीन, वो पूरी होती हुई दिख रही है। हमने सूरह बकरा में ज्यूस के बारे में पढ़ा और सूरह आले इमरान में कसरत से हमने हजरत ईसा और उनके कौम के अकायद को पढ़ा। अब सूरह निसा के एंड पे अल्लाह ताला यहूद और नसारा के जो आपस के इख्तलाफ हैं उनकी बात बता रहे हैं। तो इसको समझ लीजिएगा कि जब अल्लाह ताला ने तौरात दी बनी इसराइल को, दी पूरी सही गाइडेंस थी, उसमें वही चीजें थी मोस्टली जो कुरान में आज मौजूद है। लेकिन क्या हुआ कि इनके मजहबी रहनुमाओं पर जब जवाल नाजतारी हुआ तो उन्होंने उसमें चेंजेस कर दी, उसको बुक की बजाय वर्क बुक बना दिया। जब वर्क बुक बना दिया तो उसका नुकसान क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे मसाइल बदल गए। वक्त के साथ साथ लोग ऐसे ही यूज्ड टू हो गए। अब हुआ क्या कि जब किताब में बहुत सारी चीजें बदल गई तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को भेजा, और हमेशा ऐसा ही रहेगा। जब लोग अल्लाह की किताबों को भूल जाते हैं, अल्लाह की किताबों पर अमल नहीं करते या उसको चेंज करते हैं तो अल्लाह भेजते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने असल में ज्यूस के जो स्कॉलर्स थे उनकी की हुई चेंजेस को खोला था। वो कह लीजिए जो खियानतें थी उनकी कि उन्होंने लोगों से पैसे ले लेकर फतवे बदल दिए। मिसाल है कि दौरात में ये था कि कोई कत्ल करेगा तो उसके बदले में कत्ल है, अब यह आयत मौजूद थी। अब होता क्या कि इनके किसी कबीले का कोई बड़ा शख्स कत्ल करता तो इनके लोग उस प्रीस्ट के पास आते और उसको कहते कि देखो हम तो नहीं अपने इस बड़े शख्स को मरने देंगे, तुम क्या करो कि हमसे पैसे ले लो और पैसे लेने के बाद क्या करो कि इधर मसला बदल दो। वो क्या करते, उसी तौरात की आयत पे जाकर कि कत्ल के बदले में कत्ल है, मगर मिसाल है कि बनु कुरैजा का या बनु कैनका का कोई शख्स कत्ल करे तो वो एग्जेम्प्टेड है, ये जुमला लिखा दिया। अब इसे हुआ क्या कि दीन प्ल्यूट हो गया ना, अल्लाह की मर्जी बदल गई दूसरों की मर्जी के अंदर। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर लोगों को प्योर दीन दिखाया। जब हजरत ईसा आके इन खियानतों को खोलते तो उस दौर के जो मजहबी स्कॉलर्स थे बनी इसराइलियों के वो आपके दुश्मन हो गए। इसी में एक बुरा काम जो इस कौम ने किया वो क्या किया कि सूद का काम खुल के करने लगे, हत्ता के बैतुल मकदस जिसको जरूसलम आप कहेंगे उसके अंदर बैठकर ज्यूस के जो बड़े बड़े लोग थे दौलतमंद और असर और रसूख वाले वो सूद का काम करते थे। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर उन पर जब तनकीद की और उनको बताया कि देखो तुम ये काम छोड़ दो ये गलत है, और पूरे इनके जुमले मौजूद हैं आज इनकी किताबों में, इस वक्त तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो सब कुछ तारीख ने सब कर दिया कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको डांटा कि तुमने अल्लाह के घर को चोरों का भट्ट बना लिया और उसी में तुम सूद का काम कर रहे हो जो तुम्हें रोका गया, बस ये था वो नुकता जिस पे इनके मजहबी स्कॉलर ने सोचा अब इस शख्स को मरवाओ, ये तो अब हमारे माल पे आ गए। जहां भी याद रखे मनी मैटर्स पे तनकीद होगी वहां लोग दीन के खिलाफ होंगे। उन लोगों ने जाकर उस मुल्क के बादशाह जो उस वक्त का था जालिम उससे राबता किया, खुद तो मरवा नहीं सकते थे, इस तरह से हजरत ईसा को सूली पे चढ़ाने का फैसला हुआ। ये सारी वही बातें हम पढ़ रहे हैं। और हजरत ईसा को सूली पे चढ़ाने की कोशिशें उन्होंने की, लेकिन अल्लाह ने उनको ऊपर उठा लिया। ये सब चीजें हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। दोबारा इसी सारी सोच के साथ देखिएगा। وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، और उनके इस कॉल के बदले में, यानी इन्होंने जो ये बाकी बातें तो थी वो है ही थी कि हजरत मरियम पर इल्जाम तो लगाते थे, बल्कि खुद कहा कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम जो रसूलुल्लाह थे उनको कत्ल कर दिया। हालांकि फिल वाके ना तो उन्होंने उनको कत्ल किया ना सलीब पर चढ़ाया, बल्कि मामला इन पर शुबे वाला कर दिया गया। और जिन लोगों ने इनके बारे में इख्तलाफ किया वो भी दरअसल शक में मुबतला है। इनके पास इस मामले में कोई इल्म नहीं, महज गुमान ही की पैरवी है। और अब अल्लाह का फैसला सुन लीजिए, वमा कतलूहु यकीना, हरगिज उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया। देखिए, यहूद और नसारा का हजरत ईसा के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है? यहूद कहते हैं हमने कत्ल करके काम खत्म कर दिया। नसारा के डिफरेंट सेक्ट्स हैं, डिटेल नहीं इस वक्त दे सकते, लेकिन उनमें से आम तौर पे क्या कहते हैं कि ईसा कत्ल तो हो गए थे, लेकिन फिर वो गुड फ्राइडे जिसको ईस्टर के नाम पे रखते हैं, कहते हैं उस दिन जिंदा हो गए थे। कुछ का ये है, कुछ कहते हैं कि फौत हो गए थे लेकिन अभी भी जिंदा है, कोई कुछ कहते हैं। अब मुस्लिम क्रीड के वमा कतलूहु यकीनन, 100 से ज्यादा हदीसें तवातुर के साथ मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उनका हाल हुलिया, उनके बालों की लंबाई, उनके जिस्म से पानी के कतरों का गिरना, किस जगह आएंगे, लुत के मुकाम पे आएंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर यानी अल्लाह के नबी की उम्मत से होंगे, फिर उनकी मौजूदगी में दज्जाल निकलेगा, उसका मुकाबला होगा, उसको अल्लाह ताला उनके हाथ से मरवाएगा, फिर दुनिया में अमन और चैन होगा, फिर वो शादी करेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर अपनी तबई मौत फौत होंगे, और उसके बाद नबी सल्लम के पहलू में मदीना में दफन होंगे। ये सब हदीसें मौजूद हैं। इसके बावजूद आज मुसलमानों में से ये गिरोह ऐसा है कि जो इसका कायल नहीं है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि इल्म के साथ हम अपने बच्चों को बचाएं। बाद सफा आप देखिए कि जब हम बाहर निकलते हैं मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों में, डिफरेंट सोच के लोग होते हैं ना। चले, एक तो वाजे तौर पर कहते हैं मुसलमान नहीं है, लेकिन मैं आप सबको एक बात नसीहत की कहूंगी, अपने बच्चों के दोस्तों पर नजर रखें जिनको इवन आप कहते हैं मुस्लिम है, लेकिन आपको पता है मुस्लिम में भी 2-3 कबीले ऐसे हैं कि जिनके अकायद सरासर कुफरी और शिरकी हैं, कि जिनके लिए कुफर के फतवे मौजूद हैं। अब जब दिन रात साथ रहते बैठते हैं तो वो फर्क मिटता है, फिर शादियां होने लगती हैं, फिर जो मुसीबतें आगे आती हैं उस अल्लाह तला की पनाह में, तो मुसलमान कहलाने वाला एक गिरोह खुद को कहता है ईसा नहीं आएंगे, आ चुके। वो खुद को मसीले मसीह कहकर अपने नाम के साथ कुछ, वो कहते हैं ये लुध नहीं लुधियाना था और कादियान में ये काम हो चुका। तो आज के दौर का ये बहुत बड़ा फितना, चूंकि ये ऑर्गेनाइज लोग होते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पुष्ट पनाही है बड़ी हुकूमतों की, तो ये फिर अपना दीन आम करते हैं। इखलाक के इतने आला होंगे कि आप इन जैसे इखलाक किसी का नहीं देखेंगे। तो लिहाजा किसी से बात करें, किसी जगह रिश्ता नाता करें, पहले चेक कर लें कि उस बच्चे का दीन क्या है, मजहब क्या है। तो आज इस मसले में जो सरासर खुला हुआ है, उन्होंने इसको साबित कर दिया कि ईसा नहीं आएंगे बल्कि उनकी जगह पे कोई और आ चुका। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे ईमान की हिफाजत कर दे। फिर फरमाया उन्होंने यकीनन मसीह को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने इनको अपनी तरफ उठा लिया। मुमकिन है अल्लाह किसी को जिंदा जिस्म के साथ ऊपर उठा सकता है? बिल्कुल उठा सकता है, रूह भी तो जाती है ना। तो जिस्म मट्टी में दबाने की बजाय अगर साथ चला गया तो क्या बड़ी बात थी। अल्लाह ताला जबरदस्त ताकत रखने वाला और हकीम है, अहले किताब में कोई ऐसा ना होगा जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान ना ले आए, सुभान अल्लाह। और क्यामत के रोज वो इन पर गवाही देंगे, गरज इन यहूदियों के इसी जालिमाना रवैये की बिना पर और इस बिना पर कि ये बकसरत अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और सूद लेते हैं जिससे इनको मना किया गया, और लोगों के माल नाजायज तरीके से खाते हैं। हमने बहुत सी पाकीजा चीजें इनके लिए हराम कर दी जो पहले से इनके लिए हलाल थी। ये आयत 161 का शुरू का हिस्सा हाईलाइट कीजिएगा, वख्ज़िहिम अर्रिबा वक़द नुहू अन्हु। कुरान के लफ्जों को अगर आप वर्ड टू वर्ड में भी जाके देख लेंगे, व और अख्ज़िहिम लेना इनका रिबा सूद को, व और कद तय की नुहू और रोके गए थे, पैसिव वॉइस है ये, अनहु से। किस बात की दलील है कि जैसे इस्लाम में सूद हराम है इसी तरह बनी इसराइलियों पर भी सूद हराम था। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आज पूरी दुनिया का निजाम जो इंटरेस्ट बेस्ड है वो इन्हीं के 200 खानदानों के हाथ में। इस पे हमने काफी डिटेल से बात की थी कि ये जो दुनिया में आज बैंकिंग सिस्टम है ये कहां से चला था, इसके पीछे ये इंटरेस्ट बेस्ड सब कुछ। और आज आपको हैरत होगी कि बड़ी बड़ी ताकतें वो 200 खानदानों की इस वक्त मकरूज हैं कि जिन्होंने ये सारा निजाम रखा। इस कौम की रगो रेशे में सूद फंसा हुआ है। आज पूरी दुनिया में ये जो इकोनॉमिकल टेररिज्म है ना, कि पैदा होता बच्चा भी सूद में है और दुनिया से जाने के बाद भी उसकी किस्तें नहीं खत्म होती, इसके पीछे यही जहन है। आप इसकी हिस्ट्री खुद पढ़ के देखें, आप कांपने लग जाएंगे। आप एक पूरा जाल फैला हुआ इस वक्त पूरी दुनिया में, कुछ लोग उसको दज्जालियत कहते हैं, कोई इसको कुछ कहते हैं। और ये सजा है इस बात की कि वो कौम जिसको अल्लाह ने उनकी किताब में इस चीज से रोका, जब आज पूरी दुनिया को उन्होंने तिगनी के नाच पे नचाया, ये कागज के नोट कहाँ से आए? ये पहले नहीं थे। देखिए, इस्लाम ने हमेशा मनी जो है ना वो गोल्ड और सिल्वर में रखी थी। थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट दिलवाने के लिए बता देती हूँ कि आज से ज्यादा अरसा पुरानी बातें भी नहीं है, ये 100-200 साल पुरानी बात है। सिर्फ 19वीं सेंचुरी के शुरू की बातें कर ले कि सारी दुनिया में एक ही सिक्का चलता था। आप अमेरिका में बैठे हैं, आपका डॉलर है, अगर आप पाकिस्तान में, आपका रुपया है, लेकिन दोनों मेड ऑफ गोल्ड थे, कागज के टुकड़ों पे नहीं छपता था। फर्क इतना था कि अमेरिका के गोल्ड पे उस पे अमेरिका की मोहर थी, पाकिस्तान में पाकिस्तान की थी। अब सफर में गोल्ड अपने साथ रखते हैं, अमेरिकन सिक्कों की सूरत में, चाइनीज सिक्कों में, या पाकिस्तानी, जहां आपको पैसे खर्च करने थे, जरूरत पड़े आप ज्वेलर के पास जाते हैं, आप अपना गोल्ड बेचते हैं, जो उसका वेट होता था आपको मिल जाता था। सारी दुनिया की एक करेंसी थी, ये 1 और 100 का फर्क कहां से आया? ये 100 180 का फर्क कहां से आ गया? ये कागज के, रातों रात कागज के नोट बने, ये सब इस कौम की कहानी है। उन्होंने लोगों का गोल्ड पहले लिया, पहले दुनिया में बहुत बेरोजगारी पैदा की, फिर लोगों को खौफ दिलाया कि चोरियां बहुत होंगी, तुम अपना गोल्ड हमें दे दो। लोगों ने इनको गोल्ड दिया कि चलो सिक्योर है, रखा कुछ अरसे बाद इनको ख्याल आया कि गोल्ड लोगों का हमारे पास पड़ा, हम इससे कुछ कर ही नहीं रहे। अब डर सिर्फ ये था कि लोग हमसे वापस ना मांग लें, तो इन्होंने लोगों को ऑफर दी कि लोगों अगर क्या ख्याल है, आपका गोल्ड हम रख लें और उसकी जगह एक स्लिप आपको दे दें। ये जो आज मेरे आपके इस नोट है ना, बिल पहले स्लिप होते थे, वो कहते थे ये स्लिप रख लो, दैट मीन के वेन एवर यू विल कम वी विल गिव इट यू टू बैक। लोग बड़े खुश हुए, अच्छा ये स्लिप बन गई। अब जब स्लिप बन गई, कुछ अरसा लोग इसमें रहे, फिर इन्होंने एक और ऑफर दी, कहने कि आपके जितना गोल्ड है सारा लाके हमारे बैंकों में जमा करा दें, तो हम आपको फायदा क्या देंगे कि जो गोल्ड आप हमारे पास रखते हैं हम उस पर 10% आपको पैसा भी देंगे। लोग बड़े खुश, घर में गोल्ड पड़ा है तो चोरों का डर और कुछ बढ़ भी नहीं रहा, इनको दे रहे हैं, एक तो ये हमारा सिक्योर कर रहे हैं और दूसरी बात है ये हमें 10% दे रहे हैं। लोगों ने सब सोना चांदी निकाल कर इनके हाथ में दे दिया, और उसके बाद क्या हुआ ये तो एक लंबी कहानी है। वल्लाही हम सो रहे हैं। मैं कहती हूँ उम्मत मुस्लिमा को अगर उम्मत वसत बनना है, आज इकोनॉमिकल इश्यूज अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। और याद रखिए, मैंने खुद एक रिपोर्ट में पढ़ा कि अब दोबारा दुनिया में ये आवाजें उठ रही हैं कि कागज के नोट खत्म करो। ये जो आज आपकी मेरी चेक बुक है ना, ये उसी की यादगार है। फिर ये क्रेडिट कार्ड में बदल गया, फिर रातों रात सोना सोना खत्म हो गया। लोगों को कहा कि आपका सोना 5 साल तक हम नहीं देंगे आपको, बेच के खा पी के उससे अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट्स कर दी और लोगों को कागज के नोटों से हिसाते रहे। बैंक खाली था बिल्कुल, लोग सोचते थे हमारा गोल्ड सारा बैंकों में पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं था अंदर। लेकिन इस तरह से ये बैंकिंग सिस्टम जो आज पूरी दुनिया में आ चुका है, ये इन चीजों से शुरू हुआ था। और इस वजह से इस कौम ने आज पूरी दुनिया को, ये आज जिस मुल्क में मैं और आप बैठे हैं, ये उनके मकरूज हैं। ये बेचारे कहने को बड़े बड़े मुल्क हैं, लेकिन असल में इनकी अपनी इकोनॉमी इनके हाथ में नहीं, क्योंकि मेन कंट्रोल उधर है। पूरे पूरे घर इनके सोने की ईंटों के साथ भरे पड़े हैं, इतना पैसा इन लोगों के पास, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज है। इसलिए आज मुझे और आपको इसकी जरूरत है। हम मुसलमान अगर इस्लाम का इकोनॉमिकल सिस्टम पढ़ते हैं, अपने बच्चों को ट्रेन करें, आप ऐसी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बनाते कि जहां इस्लामिक नॉलेज पढ़ाए जाए? देखिए, दुनिया की चीजें तो पढ़ने पढ़ाने में बहुत कुछ आ गई। एक बचपन से पैदा होकर बच्चा इस्लाम सीखने वाला, जब चले मास्टर्स तक भी पहुंचता है, उसको 19 20 21 की बिकी पता होती है, वो कभी बेवकूफ नहीं बनेगा। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी आंखें खोले। इस वक्त हाल वही है जो अल्लाह के नबी ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा हर बंदे के मुंह में सूझ जाएगा, कुछ नहीं है तो उसके मुंह नाक के रास्ते गुबार तो जाएगा। आज आप देखिए जकड़े में, लेकिन इससे निकलेंगे कैसे? बहुत इजी है। आज लगता है कि हम नहीं निकल सकते, लेकिन हम उससे निकलेंगे जब हम सो के उठेंगे। याद रखिए, इस पूरी दुनिया का नसीब उम्मत मुस्लिमा ने बदलना, क्योंकि इस्लाम इज अ कंप्लीट वे ऑफ लिविंग। इस्लाम ने जो रूल्स और रेगुलेशंस और ये जो दिए मेथोडोलॉजीज, ये सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म और सोशलिज्म और डेमोक्रेसी, ये तो खेल खिलौने हैं, ये मैन मेड लॉज हैं, अल्लाह के लॉज हैं। अब अगली सूरत मायदा पूरी अल्लाह के लॉज हमें पढ़ाएगी। शरीयत जिसने समझनी है वो सूरत मायदा को पढ़े। इसलिए सूरत के एंड पे अल्लाह ताला हम सबको कह रहे हैं ला के निर्रासिखून फिल इल्मी, लेकिन वो लोग जो इल्म में पुख्ता है, इल्म का रसूख पैदा कीजिए। इस वक्त मैं कहती हूँ उम्मत मुस्लिम अपने सारे रिसोर्सेज नॉलेज पे लगा दे, खुद भी सीखे, नस्लों को भी सिखाए, दूसरों की मदद करे। 2 4 10 साल की खेल है, इस दुनिया का नक्शा बिल्कुल फर्क होगा और लोग हमें दुआएं देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुसलमान जाग के काम करेंगे तो नॉन मुस्लिम उनको दुआएं देंगे। देखिए ऐसे ही है ना कि एक हॉस्पिटल है उसमें बहुत सारे बीमार हैं और डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी, तो बीमार बददुआएं देंगे ना उनको कि तुम्हारी कमी की वजह से हम मरेंगे या हमें तकलीफ हुई। जिस दिन उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेस काम पे आके काम करेंगे तो मरीज क्या होंगे? सेहतयाब होंगे। तो जब वो सेहतयाब होंगे तो डॉक्टर्स को क्या देंगे? दुआएं देंगे। तो मैं और आप कौन है इस दुनिया के? डॉक्टर्स हैं। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हम काम करेंगे, लोग हमें दुआएं देंगे। आज बददुआएं क्यों, आज गालियां क्यों पड़ती हैं? हमने काम छोड़ा हुआ, हम हड़ताल पे गए हुए डॉक्टर्स हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी आंखें खोल दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लोगों के माल नाजायज तरीकों से खाते हैं, और हमने बहुत सी पाक चीजें इनके लिए हराम कर दी जो पहले से इन पर हलाल थी, और जो लोग इनमें से काफिर हैं इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, मगर इनमें जो लोग पुख्ता इल्म रखने वाले हैं और ईमानदार हैं वो सब इस तालीम पर ईमान लाते हैं जो है नबी तुम्हारी तरफ नासिल की गई और जो तुमसे पहले नासिल की गई थी। इसी तरह की ईमान लाने वाले और नमाज ज़कात की पाबंदी करने वाले और अल्लाह और रोज़े आखिर पर सच्चा अकीदा रखने वाले लोगों को हम जरूर अजर अजीम अता फरमाएंगे। अल्लाह की तसल्लियाँ कितनी जल्दी आ जाती हैं कि मुसलमानों घबराओ नहीं, बस तुम जम जाओ, तुम्हें यकीन आ जाए तुम कौन हो, तो फिर देखो तुम्हें क्या होता है। फिर इसके बाद फरमाया, नबी हमने आपकी तरफ इसी तरह वही भेजी जिस तरह नूह और उसके बाद के पैगम्बरों की तरफ भेजी थी। हमने इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलादे याकूब, ईसा, या अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ वही भेजी। हमने दाऊद को जबूर दी। हमने इन रसूलों पर भी वही नाजिल की जिनका जिक्र हम इससे पहले आप पर कर चुके हैं, और इन रसूलों पर भी जिनका जिक्र आपसे नहीं किया। हमने मूसा से इस तरह गुफ्तगू की जिस तरह गुफ्तगू की जाती है। ये सारे रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए थे ताकि इनको मबूस कर देने के बाद अल्लाह के पास मुकाबले में कोई हुज्जत न रहे, और अल्लाह बहरहाल गालिब रहने वाला और हकीमो दाना है। देखिए बार बार अल्लाह ताला अपनी अथॉरिटी को साबित करते हैं कि मैंने हर हुज्जत तमाम कर दी, अब आगे तुम जो चाहो। लोग नहीं मानते तो ना माने, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ऐ नबी जो कुछ इसने तुम पर नाजिल किया है अपने इल्म से नाजिल किया है, और इस पर मलाइका भी गवाह हैं। अगर अल्लाह का गवाह होना बिल्कुल किफायत करता है, जो लोग इसको मानने से खुद इनकार करते हैं और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं वो यकीनन गुमराही में हक से बहुत दूर निकल गए हैं। इसी तरह जिन लोगों ने कुफर और बगावत का तरीका इख्तियार किया और जुल्मों सितम पर उतर आए, अल्लाह इनको हरगिज माफ ना करेगा। आज है बगावत अल्लाह के कवानीन से। अल्लाह ताला हमें अपनी इसलाह की तौफीक दे और लोगों को भी हम इसी चीज की दावत दें कि अल्लाह ताला के मुकाबले में बगावत को छोड़कर आजजी और सबमिशन पे आ जाएं। फिर इसके बाद फरमाया, अल्लाह ऐसे लोगों को हरगिज माफ नहीं करेगा। कौन लोगों को नहीं करेगा? और इन्हें कोई रास्ता सिवाय जहन्नुम के रास्ते के नहीं दिखाएगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। यानी वो लोग जिन्होंने लोगों की दुनिया को जहन्नुम बनाया, आज कितनी अजियत में दुनिया है, ऐसे मैन मेड लॉस की वजह से पूरी दुनिया जहन्नुम बनी पड़ी है। अल्लाह कहते हैं मैं इनको असली जहन्नुम के अंधेरों में डालूंगा। देखिए अल्लाह का इंसाफ है, जहन्नुम जन्नत अल्लाह का रहम है, अल्लाह का प्यार है, अल्लाह का फजल है। वहां अल्लाह अपने फजल से डालेगा, अपने रहम से डालेगा, लेकिन जहन्नुम में अदल होगा। अल्लाह को अपने एक बंदे पे जुल्म इतना बुरा लगता है, कहां कौमों की कौमें, नस्लों की नस्लें जुल्म और ज्यादती का शिकार हो, तो क्या अल्लाह से लोगों को छोड़ देगा? अल्लाह कभी नहीं छोड़ेगा। अब यहां देखिए कितनी प्यारी दावत दे दी, या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक्की मिन रब्बिकुम। लोगों ये रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर आ गया। दिल खुले हक के लिए, हमारे दिल में यकीन बढ़ता जा रहा है कि इस्लामी हक है और अल्लाह का कलाम हक है, तो क्या करो? फामिनू, पस ईमान ले आओ। क्यों? खैर अल्लकुम, बेहतर होगा तुम्हारे लिए, तुम्हें इसका फायदा होगा। अच्छा हम नहीं लाते, बड़ा मुश्किल है, इट्स टू हार्ड। तो कवाइन तक फुरू इन्नलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। तो याद रखो कि अगर इनकार करोगे तो जान लो कि आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है, और अल्लाह तआला आलिम भी है और हकीम भी है। अहले किताब की गुमराहियों में एक बहुत बड़ी वजह उनका गलूफ था। गलूफ क्या होता है? एग्जेजुरेशन, किसी के मुकाम को या बढ़ा देना या घटा देना। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, नसारा ने क्या किया? उनको अल्लाह का बेटा बना दिया, एग्जेजुरेट कर दिया ना कि बंदे को खुदा बना दिया। ज्यूस ने हजरत ईसा को नबीउल्लाह बनाने के बजाय नऊज़ुबिल्लाह वलदुज़्ज़िना करार दिया कि वो तो शायद किसी जिना की पैदावार थी, जिसके नतीजे में वो भी भटक गए, ये भी भटक गए। अल्लाह ताला कहते हैं कि पिछली कौमें चूंकि गलूफ से भटकी हैं, ओ मुसलमानों, ओ उम्मत वसत, तुम अपने दीन में गलूफ ना करना। कैसे गलूफ होता है इसको भी देखते हैं। आज देखिएगा, या अहलल किताब इला तगलू फी दीनिकुम, अहले किताब अपने दीन में गलूब न करो, अल्लाह की तरफ हक के सिवा कोई बात मनसूब न करो, मसीह साहिब ने मरियम इसके सिवा और कुछ ना थे कि वो अल्लाह के एक रसूल थे और एक फरमान था जो अल्लाह ने मरियम की तरफ भेजा, वो एक रूह थी अल्लाह की तरफ से जिसने मरियम के रहम में बच्चे की शक्ल इख्तियार की, बस तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ये ना कहो कि तीन है। तीन क्या है? ट्रिनिटी। तीन ना को होली गोस गॉड और वो और ट्रिनिटी, वो ना समझ आने वाली बात है जो क्रिश्चियंस के स्कॉलर्स को भी समझ नहीं आता। एक मौके पे यूसुफ फेस्टिस है, आपने देखा होगा, उनको सुना होगा, तो उनका एक लेक्चर अटेंड किया था। ये अपने दौर में पहले प्रीस्ट थे, तो ये खुद बहुत जॉली से भी है, तो इन्होंने खुद सुनाया था कि ट्रिनिटी हम प्रीस्ट को भी कोई नहीं समझ आती। फिर उन्होंने मिसाल दी कि जैसे एक एग है ना, लेट सी कैसे ट्रिनिटी है, लुक सी दिस इज एग, ओके, इसका एक ऊपर छिलका है, फिर उसके अंदर एक वाइट ऑफ है, फिर एक येलो, दिस इज थ्री इन वन एंड वन इन थ्री। यानी वो खुद जोक बना के बता रहे थे कि इनको खुद नहीं पता ये क्या मिस्ट्री है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ट्रिनिटी कुछ भी नहीं है, मत कहो कि तीन है, बाज आ जाओ, ये तुम्हारे हक में बेहतर है, अल्लाह तो बस एक ही खुदा है, वो पाक है इससे कि कोई इसका बेटा हो, जमीन और आसमान की सारी चीजें उसकी मिल्क हैं, इसी की किफालत और खबर गिरी के लिए वो खुद काफी है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ऐसे गलत अकायद से सबको बचा ले। देखिए जहन्नुम की आग तो सबके लिए तकलीफ की है ना, हमें सिर्फ मुसलमानों का रोग नहीं होना चाहिए, हमें गैरों के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह उन सबको हिदायत दे। मसीह ने कभी इस बात को आर नहीं समझा कि वो अल्लाह के बंदे हों, ना मुकर्रब तरीन फरिश्ते इसको अपने लिए आर समझते हैं। अगर कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए आर समझे, आर क्या है? वो काम करना जिसे शर्म आए, यानी अल्लाह की बंदगी से आर क्या है? सबके बीच में नमाज पढ़ना, उफ मैं सबके सामने नमाज पढ़ू, अच्छा अब सब बैठे हैं तो मैं नमाज पढ़ू, मैं घर जाके पढ़ूंगी, ये आर है। अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह की बंदगी को अपने लिए शर्म का मुकाम समझे और तकबर करता है, तो एक वक्त आएगा जब अल्लाह सबको घेर कर अपने सामने हाजिर करेगा। इस वक्त वो लोग जिन्होंने ईमान लाकर नेक तर्ज अमल इख्तियार किया है अपने अतर पूरे के पूरे पाएंगे, और अल्लाह अपने फजल से इनको मजीद अता करेगा, और जिन लोगों ने बंदगी को आर समझा और तकबर किया इनको अल्लाह दर्दनाक सजा देगा, और अल्लाह के सिवा जिन जिन की सरपरस्ती और मददगारी पर वो भरोसा रखते हैं इनमें से किसी को भी वो वहां ना पाएंगे। क्या समझ आया? हर जगह अल्लाह के बंदे बन के रहो। देखिए कितना प्यारा मैसेज है हम वेस्ट में रहने वाले मुस्लिम्स को। अल्लाह कहते हैं नमाज का वक्त आया तुम नमाज पढ़ो, तुम्हें हुक्म दिया है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़नी है, तुम्हें हराम से रोका हराम से रुक जाओ, हलाल की दावत है हलाल की दावत ले लो, तुम्हें एक खास हाल हुलिये पे रखा तुम उस पे रो। जब हम अल्लाह के हुक्मों पे अमल करते हैं अल्लाह को हम पे प्यार आता है, और जब हम कहते नहीं लोग क्या कहेंगे, और अब नोट कीजिएगा बड़े से बड़े गुनाह के रास्ते की रुकावट लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं जिसने अल्लाह को हर जगह माना उसको इंशाल्लाह दुनिया का कोई कोना भी नुकसान नहीं देगा, और अल्लाह ताला हम ऐसे लोगों में कर ले कि जमीन में चलते फिरते अल्लाह के बंदे बनकर जिए। फिर आगे बड़ी प्यारी दावत है, या यूहन्ना सुकद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ए लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आ गई, और हमने तुम्हारी तरफ ऐसी रोशनी भेज दी जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाने वाली है। कौन सी रोशनी है ये? सब बोल दें ये कुरान का नूर है। क्या हम कुरान को नूर समझते हैं? क्या इस नूर से हमारे सीने रोशन हो रहे हैं? और आप देखिए जब आपकी जिंदगी में कुरान का नूर आता है ना, तो बस उसके बाद आप सोचिए कि आपको अंधेरे और रोशनी का फर्क पता चलता है। इमेजिन कीजिए कोई कमरा है, डार्क है, बिल्कुल अंधेरा धुत करके, और अल्लाह माफ करे किसी भी नाइट क्लब का मंजर जहन में आ जाता है। हमारा एक जगह स्कूल था जहाँ पहले शहर में, तो स्ट्रिप मॉल था, तो उसके दो तीन शॉप्स छोड़ के नाइट क्लब था, तो कभी उधर से आगे मस्जिद जाते थे हम लोग, तो जब अपने स्कूल से निकल कर हम मस्जिद जाते थे तो कभी कभी वो नाइट क्लब का दरवाजा खुलता है या कोई आ रहा जा रहा है, पूरे बाहर भी उन्होंने अंधेरे पर्दे कर्टन लगाए हुए थे, खौफ आता था वहां से गुजरते, तो कभी कोई एंटर हो रहा है तो खुलता था, यकीन करें अंदर का माहौल देख ऐसे लगता था भूत बंगला, सुर्ख और काला और तेज म्यूजिक और थरकते हुए लोग। तो मेरे जिम्मे हमेशा इन आयतों पर ही आता है कुरान और इस्लाम के बाहर जिंदगी इतनी अंधेरी होती है। अब एक अंधेरे कमरे में कोई बैठा है, कोई चीज उसके पास है, कहते है बड़ी सॉफ्ट है इसको पकड़ लो, इतने में कोई आकर रोशनी जलाता है बल्ब, अरे ये क्या पकड़ा हुआ है, ये तो सांप था, मैं तो इसको रेशम की रस्सी समझा। ये कुरान ये काम करता है आपके मेरे जिंदगी में। हमने जो सांप और बिच्छू पाले होते हैं ना अपने घरों के अंदर, कुरान खोल के दिखाता है लोगों ये आग जहन्नम की आग है, ये जहन्नम की रस्सी है, तो रोशनी किसको अच्छी नहीं लगती बताइए जो सोना चाहता है। जब आपके बच्चे नहीं उठना चाहते और आप लाइट ऑन करते हैं तो वो क्या कहते हैं आगे से, लाइट बंद कर दो लाइट बंद कर दो, तो याद रखिए, कुरान की रोशनी और नूरुल कुरान का वही दुश्मन होगा जिसको ये रोशनी अच्छी नहीं लगेगी। वो कहते हैं लोग सोए रहे, रोमांटिक रहो, बैठे रहो, ड्रंक रहो, नशों में पड़े रहो, तो कुरान की रोशनी में आना खुशबख्ती है। पता ही तब चलता है ये जिन चीजों को सीने से आज तक लगाया हुआ ये जहन्नुम के सांप है। फिर वो रोशनी आ जाती है, फिर इंशाल्लाह इलाज भी बड़ा मुमकिन है। लेकिन जिनको नहीं पता, अब आप ये मसले यहां सुन रहे हैं, कुरान आपने सुना, सूद की बात से सुनी, आप घर जाके आप अपने किसी दोस्त को प्लीज फोन पे मत बताइएगा। जब तक खुद वो इस कुरान की आयतों को खुद ना पढ़ ले, कभी ये मसले बाहर जाके ना सुनाए। फर्क वही है कि आपकी जिंदगी में ये कुरान का नूर आया तो आपको ये फर्क लगा, अब उन्होंने तो अभी नहीं चखा, तो वो तो आपकी बातें सुन, अरे छोड़ो टू मच है, कहाँ फंस गई हो, छोड़ो कुरान को, आओ घर बैठ के सपारा सपारा पढ़ते हैं, देखना आधे घंटे में एक सपारा हो जाएगा। ये क्या 2 2.5 घंटे में फंसे रहते हैं। वो लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे क्योंकि अभी उनकी जिंदगी में रोशनी नहीं है। क्या करें, एक दीपक जलाते हैं, एक एक चिराग हम में से हर एक जलाते हैं। हर दिन 30 दिन है तो अपने 30 दोस्तों को टारगेट करके हर दिन उसकी जिंदगी में कुरान का नूर खोल दें, घर चले जाएं, उनके जाके पेलटॉक खोल दें, मिक्सलर खोल दें, जो मीडिया उनको आसान है वो खोल दें, आ सकते हैं तो साथ ले लें, बुला सकते हैं तो बुला लें, किसी भी तरह, और कहीं भी कोई उनको पढ़ाता है तो उधर जाके छोड़ा है। लेकिन इस कुरान की अंधेरों की वजह से, वह देखिए पिछली कौम है ना, उनकी किताबें खत्म हो गई, आज बिल्कुल वो है ही नहीं, ये तक नहीं उनको पता कि तौरात किस जुबान में नाजिल हुई थी। आज तो जो उन्होंने हिब्रू ट्रांसलेशन किया ना, उनकी किताबें खत्म हो गई तो उनकी तबाही का जो हाल है आप उसका अंदाजा कीजिए कि आज उम्मत मुस्लिमा किताब महफूज शक्ल में मौजूद है, जेरो जबर नहीं बदला, किताब कुरान की सूरत में, हाफिजों की सूरत में, करोड़ों हाफिज कुरान दुनिया में मौजूद है, फिर भी उम्मत मुस्लिमा का हाल क्यों खराब है? क्योंकि किताब बंद है। खुली किताब की रिस्पेक्ट करना और बंद किताब की रिस्पेक्ट करना मुश्किल है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगियों में ये किताब खुल रही है, दुआ करें अब ये खुली ही रहे और यही किताब हमारा नामा अमाल बन जाए। और इकरा किताब बकफा बिनफ्स कल यौम अलैका हसीबा, कल जब फरिश्ते हमारा नामा अमाल खोलें तो वो कहीं तो सारा कुरान से भरा हुआ, ये तो कुरान के सिवा कुछ बोलते ही नहीं थे, कुरान के सिवा कुछ सुनते ही नहीं थे। और अल्लाह ताला हमें ऐसे ही लोगों में कर दे। तो फरमाया कि तुम्हारी तरफ ऐसी रोशनी भेजती जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह की बात मान लेंगे, पूछिए खुद से 3 सेकंड में, क्या मैं इन लोगों में हूं जो अल्लाह की बात मान लूंगी? अब मुश्किल लगा तो साथ ही अगली बात कर दी, वा तसमू बिही, और इसकी पनाह ढूंढ लेंगे। कब? जब अमल करना मुश्किल होगा, जब घर का माहौल फर्क है, जब सारी दोस्तें कुछ और कह रही हैं, कुरान कुछ और कह रहा है, शौहर की और राय है, आपकी और है, तो फिर ऐसे वक्त में क्या करें? अल्लाह के दामने रहमत में झुक जाएं। क्या कहें? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की तरफ पनाह ढूंढे, क्या मिलेगा इनको? फसयुदखिलुहुम फी रहमतिन मिन्हु, इनको अल्लाह अपनी रहमत और अपने फजलो करम के दामन में ले लेगा और अपनी तरफ आने का सीधा रास्ता इनको दिखाएगा। हाईलाइट करेंगे ये आयत। हम चाहते हैं कि अल्लाह हम पे अपनी रहमत करे, चाहते हैं फजल करे, चाहते हैं, चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ बुला ले, तो उसका यही रास्ता है और अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे। अब आखिरी आयत है सूरत निसा की, यस्तफ्तूनका कुल अल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, ए नबी लोग तुमसे कलाला के बारे में फतवा पूछते हैं, कहो अल्लाह तुम्हें फतवा देता है, अगर कोई शख्स बे औलाद मर जाए और इसकी एक बहन हो तो इस तरके में से निस्फ पाएगी, और अगर बहन बे औलाद मर जाए और इसकी एक बहन हो तो वो इस तरके में निस पाएगी, और अगर बहन बे औलाद मरे तो भाई इसका वारिस होगा, अगर मैयत की वारिस दो बहनें हो तो तरके में से 2/3 की हकदार होंगी, और अगर कई भाई बहनें हो तो औरतों का अकेहरा और मर्दों का दोहरा हिस्सा होगा। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अहकामात को वाजे कर देता है ताकि तुम भटकते ना फिरो। इसको हाईलाइट करें, ये है अल्लाह का प्यार आपके और मेरे साथ। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लू, अल्लाह नहीं चाहता कि हम भटकें। अल्लाह ने ये कुरान एक नेविगेटर की सूरत में हमारे हाथों में दे दिया कि इस पे चलते हुए सिराते मुस्तकीम को ढूंढो, सबीलुल जन्ना पे चलते जाओ और भटकने से बच जाओ, और वल्लाहु बिकुल्ली शयइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें भटकने से बचा दे। भटकने से बचाने का अमली तरीका अल्लाह ने क्या रखा कि हमें सूरत मायदा पे पहुंचा दिया। अगर अभी तक आप रोज आ रहे हैं, कोई भी पारा मिस नहीं कर चुके, तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है कि अल्लाह ने आपके साथ ये फैसला कर लिया कि बस नो मोर, दैट्स इट, जो भटकना था भटक चुके, अब अल्लाह ने वो सिरा हमारे हाथ में कुरान का दे दिया कि जिसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। सूरत माईदा बड़ी अहम सूरत है कुरान पाक की। नबी सल्लम की जिंदगी के आखिरी दिनों में नाजिल हुई थी, इसीलिए इसके बहुत सारे अहकाम जो हैं वो मनसूख नहीं हुए, नासे हैं। और सूरत माईदा का नाम जब माईदा टेबल क्लॉथ को कहते हैं जिस पर खाना रखा जाए, असल में इसमें एक दुआ आएगी जो हजरत ईसा के साथियों ने मंगवाई थी कि हमें आसमान से खाना मिले, जैसे कि यहूद को मनो सलवा मिला था। इस सूरत का एक दूसरा नाम सूरतुल उकूद भी है, अहद व पैमान की सूरत। इसमें सबसे ज्यादा दफा या अय्युल्लज़ीना आमनू का लफ्ज आया, बार बार पुकारा, तकवा की इसके अंदर बहुत बात है, सीरियस सूरत है। रिवायत में यहां तक मिलता है कि अपने मर्दों को सूरत मायदा सिखाओ और औरतों को सूरत नूर सिखाओ। आइए हम इसकी चंद आयात मिलकर पढ़ते हैं, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 2 तक। लंबी आयतें इसलिए दो आयतें भी काफी टाइम लेंगी। शुरू कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا